ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 श्लोक नंबर 6। मेरे को तो 6 बताया गया था, कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, इस श्लोक नंबर 5 के अंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, श्लोक नंबर 6 पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 5। कृपा करके आप लोग इसी श्लोक को मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। देवाऊचुः किं नो तत् दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूत अनुकंपित अनुकंपिनां भवत विधानां महतां पुण्यश्लोक इड कर्मणाम। श्रीदेवाऊचुहु किं नु तद दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानु अनुकंपिनां भव विधानां महतां पुण्यं श्लोके केड्य अकर्मणाम। श्रीदेवाऊचुः किं नु तद दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भव विधानां महतां पुण्यं श्लोकेड एड्य कर्मणाम। श्रीदेवाऊचुः किं नु तद दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भव विधानां महतां पुण्यं श्लोकैड्य कर्मणाम। मेरे पीछे आप लोग शब्दार्थ बोलिए। श्री देवाऊचुः, देवताओं ने कहा कि क्या नो निसंदेह तत् वा दुस्त्यजम छोड़ना कठिन ब्राह्मण हे पूज्य ब्राह्मण पुंसाम मनुष्यों का भूत अनुकंपिनाम जीवात्माओं के दुखों के प्रति अत्यंत सहानुभूत लोग भवत विधानाम आप जैसे महताम महान पुण्यश्लोक इड्य कर्मणाम जिनके पुण्य कार्यों की सभी विद्वान प्रशंसा करते हैं। तो इसके अंदर तात्पर्य नहीं है, श्लोक नंबर 6 में पढ़ता हूं, उसके शब्दार्थ को अनुवाद को पढ़ने के बाद हम लोग इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने तथा सुनने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 6, नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति न हजदीश्वरः। नूनम निश्चय ही स्व अर्थ पर इस अथवा अगले जीवन में मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाला लोकः सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति न नहीं वेद जानते हैं पर संकटम अन्यों का कष्ट यदि यदि वेद जानते हैं न नहीं याचेत मांगे न नहीं इते इस प्रकार न आह कहता नहीं यत चूंकि ईश्वर दान देने में समर्थ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु मांगे नहीं। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। हरे कृष्णा। तो पिछले वाले अध्याय में हम लोग सुन चुके हैं कि भगवान देवताओं को दधीची ऋषि के पास भेज रहे हैं। तो इससे एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान स्वयं सर्वसमर्थ हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन जी के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री गौर निताय के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, भगवान स्वयं समर्थ हैं, देवताओं के कष्ट का निवारण वो स्वयं कर सकते थे और दो बार देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए उनके सामने, लेकिन प्रकट होने के बाद पिछले वाले अध्याय के लास्ट में भगवान स्वयं देवताओं को दधीची ऋषि के पास भेज के और फिर वहीं के वहीं देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। तो इससे एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान दधीची ऋषि के पास ही देवताओं को क्यों भेजे। तो इससे यह झलकता है कि भगवान अपने भक्तों को विशेष जस देना चाहते हैं। ये तो बहुत से ऋषि हुए, केवल अथर्वानंद, केवल दधीची ऋषि ऐसे समर्थ ऋषि नहीं थे जो देवताओं के कष्ट को निवारण कर सकते थे, लेकिन दधीची ऋषि की विशेषता पिछले अध्याय के श्लोकों में बताया गया है कि जो इनका शरीर था योग और तपस्या से इतनी शक्तिभूत हो चुका था कि इनके रोम रोम में भी इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी करने में समर्थ था। और भगवान दोनों भक्तों के, इधर वृत्रासुर और उधर दधीची ऋषि, दोनों के जस को दोनों तरफ से बढ़ा रहे हैं और बीच में अपने आदेश देकर के देवताओं को और चले गए। आप उस दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए भागवत के आंख से, कि दो भक्त हैं, दो साइड में खड़े हैं और बीच में देवता लोग पहुंच करके भगवान से स्तुति किए, भगवान को प्रकट कराए और भगवान आदेश देकर के उनको भेज करके वहीं से वो छिप गए। और देवता लोग अब दधीची ऋषि के पास पहुंचने के बाद याचना करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ अचिरम, देर मत करो, जल्दी जाओ और उनसे मांगो। और जानते हुए भगवान ने भेज दिया और देवता लोग पहुंचे और दधीची ऋषि से याचना करते हैं। यह अध्याय यह नए ढंग से शुरू हुआ कि देवता और असुरों में युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम भी रखे हैं देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध। अब यह समय आ चुका है कि दधीची ऋषि अपने शरीर छोड़ चुके हैं और अपने शरीर को देने के लिए उद्यत हैं। अगर पिछले के श्लोकों में पढ़ेंगे तो यह बात उल्लेखित की गई है कि पहले तो अपना शरीर देने से दधीची ऋषि इंकार कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे कि भैया शरीर सबको प्रिय होता है, शरीर किसी दूसरे को देना इतना आसान नहीं है। जबकि भागवत के नवें स्कंद के अंदर एक श्लोक में आया है और इससे मिलता जुलता एक 11वें श्लोक के अंदर एक श्लोक आया है जिसमें बताया गया है कि काये कानम नित्यता, शरीर की कोई गारंटी नहीं है, हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन शरीर हमें छोड़ देता है, हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसको हर प्रकार से सुसज्जित करके हम इसको बचाना चाहते हैं कि हम बचे रहें, लेकिन नहीं चाहने के बाद भी यह शरीर जाएगा। तो दधीची ऋषि के स्वभाव से, दधीची ऋषि के व्यवहार से, उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिल सकती है या हम लोग यह शिक्षा ले सकते हैं कि शरीर कैसे छोड़ा जा सकता है। मरने की कला श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही राजा परीक्षित ने सिखा दिया कि मरे तो हम कैसे मरे, किस स्थिति में मरे। और वास्तव में शास्त्र जो है वो जीने और मरने की दोनों कला सिखाता है, जीना है तो कृष्ण के लिए, मरना है तो कृष्ण के लिए। और इस प्रसंग में हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि दधीची ऋषि ऊपर से तो देवताओं को कह रहे हैं कि ना शरीर कौन दे सकता है। श्लोक नंबर 4 के अंदर यह बात देवता लोगों से दधीची ऋषि स्वयं कहते हैं कि स्वयं अगर विष्णु मांगने आए इस शरीर को तो इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं लोग कि विष्णु को भी अस्वीकार कर देते हैं इस कि हम इस शरीर को नहीं देंगे। प्रश्न उठा रहे हैं, ये शरीर इतना प्यारा है कि स्वयं विष्णु हुए अगर मांगने आए तो इस शरीर को देने में, जिसका शरीर है उसके शरीर को देने में हिचकिचाते हैं। भागवत के तीसरा स्कंद में पढ़ेंगे मां देहूती और कपिल देव जी का प्रसंग तो भगवान कपिल देव स्वयं मां देवती से पूछते हैं कि यह शरीर किसका है। मां को उत्पन्न करने वाला नाना को आया शरीर है या जिस पिता ने संतति उत्पन्न करने के लिए कार्य किया या शरीर पिता का है या जिस मां ने इस शरीर को जन्म दिया जनज किया यह शरीर उसका है। तो मां देहूति इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा संभल करके सोच करके बोली कि यह शरीर तीनों में से किसी का नहीं है। मां को उत्पन्न करने वाला नाना का भी यह शरीर नहीं है और जिस मां ने इस शरीर को उत्पन्न किया उसका भी नहीं है। जिस पिता ने इस शरीर को संतति उत्पन्न करने के लिए कार्य किया यह शरीर उसका भी नहीं है। वास्तविक पिता का यह शरीर है जिसने इस संसार में मुझे आने के लिए प्रेरित किया और मेरे लिए कुछ कार्य निहित किया उसका यह शरीर है। भागवत श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय का शायद आठवां या नौवां श्लोक है, शायद आठवां श्लोक के अंदर है। भगवान कहते हैं कि भैया यह शरीर मैं नियत कार्य करने के लिए बनाया हूं। हे अर्जुन नियतम कुरु कर्मम त्वम, मैंने एक निश्चित कार्य करने के लिए इस शरीर को बनाया है और तू अगर मेरे नियत कर्म को नहीं करेगा मेरे बताए हुए कार्य को नहीं करेगा तो तुम्हारी यह शरीर रूपी यह यात्रा है वो पूरी नहीं होगी। तो इस प्रसंग से यह शिक्षा ग्रहणीय विषय है कि हम जीते जी यह शरीर हम भगवान को दे सकते हैं। दधीचि ऋषि स्वयं प्रमाण है इस प्रसंग में। छह लोगों का कवि रंती देव शिवी और दधीचि ऋषि छह लोगों का भागवतम के अंदर एक जगह गिनती कराई गई है कि ये बड़े दाता थे कि इस शरीर से सदा ऊपर उठे हुए थे। इस शरीर को किसी को भी देने के लिए किसी का उपकार करने के लिए तैयार थे और नीति श्लोक के अंदर भी यह श्लोक बताया जाता है कि इदम शरीरम परोपकाराय, इदम शरीरम परोपकाराय फलंत वृक्षा परोपकाराय दुहंत गाव परोपकाराय इदम शरीरम, परोपकार के लिए ही केवल यह शरीर मिला हुआ है दूसरे की भला करने के लिए। लेकिन हम लोग इस शरीर को प्राप्त करने के लिए केवल दूसरे की बुराई करने के लिए सोचते हैं, ठीक उल्टी दिशा में चलते। दधीचि ऋषि अपने शरीर को क्या अपने स्थिति को ऐसे कृष्ण भावना भावित उत्प्रोत हो चुके थे कि वो बैठे बैठे ही अपने शरीर के पंच धातु को पांचों तत्वों में लीन कर दिए और अपने आप को इस शरीर की स्थिति से अपने आप को ऊपर उठा लिए और उन्हें यह भान नहीं हुआ अनुभव नहीं हुआ कि यह हमारा शरीर भौतिक स्थिति की है और उस शरीर को देवता लोग ले जाकर के विश्वकर्मा जी को दिए और उनके हड्डी से जो है वज्र बनाया गया। यह स्थिति है, हम मरने की कला सीख सकते हैं। एक विशुद्ध भक्त होता है तो वह हमेशा शरीर की धरातल से अपने को ऊपर उठाया रहता है। यह पूछा जा सकता है किस प्रकार, तो वह ऐसे भाव में रहता है ऐसी स्थिति में रहता है कि पश्यन अपि न पश्यति, इस संसार में रहते हुए भी संसारिक वस्तुओं को नहीं देखता, उसकी देखने की दृष्टि बदल चुकी होती है, उसकी रहने की स्थिति बदल चुकी रहती है। है इस संसार में, लेकिन इस संसार का जो उत्कृष्ट, जिन संसारिक लोग जिसको उत्कृष्ट रस मानते हैं, उन रसों से पूरा अपने आप को छुड़ा लिया होता है, जिससे उसको यह संसार नीरस महसूस होता है, और वो ऐसे रस को प्राप्त कर लिया होता है जिसे इन संसारिक स्थितियों की भान अर्थात अनुभूति उसको नहीं हो पाती कि शरीर को कष्ट दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ उसको पता नहीं चलता। तो इन श्लोकों में यही बताया जा रहा है कि देवता लोग कहते हैं कि दुस्त्यज, यह शरीर कोई आसानी से किसी को नहीं दे सकता है। जो दुस्त्यजनीय है, बहुत कठिनाई से इसको त्यागा जा सकता है। आचार्य लोग कहते हैं कि 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने में जितना दर्द होता है, उतना एक जीवात्मा को जन्म लेने में कष्ट होता है, और उतना ही कष्ट होता है जब इस शरीर से आत्मा जब निकलता है। तो भैया, इस शरीर को कैसे किसी को आसानी से दिया जा सकता है? जब तक इस शरीर की स्थिति को हम जान नहीं लेते कि यह शरीर अगर रहेगा तो हम निकृष्ट कर्म करेंगे, तो इसको छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन यह बात भागवतम में कई जगह संकेत किया गया है कि मनुष्य शरीर से ही जल्दी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कि मनुष्य शरीर से ही हम जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस मर्त जगत में जिसको मनुष्य शरीर मिला है, उसको भगवान कुछ कर्म करने के लिए भेजे, और इस मर्त जगत को कर्म भूमि भी कहा गया है। नहीं तो इस शरीर को पालने में जितना हम लोग समय लगाते हैं, इसको सजाने में हम जितना समय लगाते हैं, जितना इसकी सफाई करने में हम समय लगाते हैं, एक कवि ने तो लिखा है कि जीवन का तिहाई भाग जो है, तीन हिस्सा जो जीवन का समय है, इस शरीर को सजाने में, संवारने में, सफाई करने में लग जाता है। और एक हिस्सा में भी कुछ समय है, कदाचित कभी कभी भगवान को याद किया जाता है। आप सोचिए, तीन हिस्सा, 100 वर्ष में 75 वर्ष इस शरीर को सजाने में, संवारने में, सफाई करने में लगा देते हैं। हम लोग अपने प्रतिदिन के रूटीन को ही देखें ना, कितना समय कृष्ण सेवा में जाता है। शुद्ध कृष्ण सेवा में कितना समय हमारा लगता है, खुद हम अपने आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। केवल इसी शरीर के लिए सारा संसार भाग दौड़ कर रहा है, इसी शरीर को मेंटेन करने के लिए और इसी शरीर को सुख देने के लिए समुद्र पार किया जाता है कि कुछ कमा करके लाएं और इस शरीर का पालन किया जाए। जबकि भागवत में यह बात बताई गई है कि यह शरीर जो है कुत्ता इंतजार कर रहा है कि यह शरीर कब मरेगा कि हम इसके मांस को खाएंगे। और एक जगह और यह बात बताई गई है कि शरीर की तीन ही अवस्था होती है, कृमि, विष्म और भस्म। तीन गति है, चाहे किसी का भी शरीर है। अगर इस शरीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है तो कृमि बन जाते हैं, अर्थात कीड़े बन जाते हैं। वीट मतलब मल, अगर कोई जीव खा लेता है तो इसको मल के रूप में निकाल लेता है। या इस शरीर को जलाया जाता है तो भस्म राख बन जाता है। आप सोचिए, कीड़ा, मल और राख, इस तीन चीजों की सेवा के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आए थे हम हरि भजन को, ठोठन लगे कपास। कि हम भजन करने के लिए तो मनुष्य शरीर को प्राप्त किए थे, लेकिन हम वैसे कपास के छाल को, खाल को हम पीट रहे हैं जिसमें से रुई अपने आप निकल चुका है। जब कपास सूख जाता है, पक जाता है, तो रुई अपने आप उसमें से बाहर निकल जाता है, क्यों, और उसका खोखला बनता बचा रहता है। और उस खोखले को अगर हम कूटते हैं तो उसमें से रुई नहीं निकलने वाली है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगे रहते हैं तो यह शरीर किसी काम का नहीं है। देवता लोग तो बड़े सुंदर शब्द में यहां बोल रहे हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वह किसी दूसरे का परोपकार करते हैं, चढ़ा रहे हैं दधीची ऋषि को कि हंसी खुशी के साथ ये शरीर दे दें, क्योंकि यह आपका शरीर केवल परहित के लिए बना हुआ है। लेकिन देवताओं को पता नहीं है क्या कि जितना हमारा शरीर प्रिय है उतना ही दधीची ऋषि का शरीर प्यारा है, जिस शरीर को हम मांगने के लिए आए हैं। लेकिन यहां स्वार्थ वशीभूत देवता है और भगवान यह कराना चाहते हैं, और दधीची ऋषि भी देवताओं के मुख से कुछ सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरू में इंकार किया कि नहीं, यह शरीर नहीं दूंगा। अब श्लोक नंबर 6 जो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, जिसको आज पाठ करना था, श्लोक नंबर 5 में प्रश्न उठा रहे हैं देवता लोग कि ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती हैं। अर्थात हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप बड़े दयालु हैं, वत्सल हैं, आप हम लोगों के रक्षा के लिए या अपना शरीर आप दे सकते हैं। जो पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो किसी की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे सब कुछ, यहां तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। इसलिए हे मुनिवर, हम लोग आपसे याचना करने आए हैं कि हमारी रक्षा हेतु और भगवान ने भेजा है, इसलिए आप अपना शरीर दे दीजिए। तो यह देवताओं का ही बोला हुआ श्लोक है 6 कि नूनम स्वार्थ परो लोको न वेदः पर संकटम, यदि वेद न जाये याचेत नेति न हजरीश्वर। कहते हैं कि जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे याचना करते हैं। अगर यह सिद्धांत देवताओं के ऊपर लागू किया जाए तो देवता क्या निस्वार्थ भाव से मांग रहे हैं थोड़ी? देवता लोग भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शरीर मांग रहे हैं। और यह इस श्लोक के अंदर व्यक्त व्यक्त भी करते हैं देवता लोग कि अगर देवता लोग यह कह भी रहे हैं कि अगर मांगने वाला इस बात को अगर समझ लेता है कि देने में कितना कष्ट होता है तो शायद वो मांगे ही नहीं। और देने वाला यह बात सोच ले कि हमारे पास है तो जो मांगता है उसको देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो दे देगा। दोनों बात कह रहे हैं। संकट स्थिति में देवता हैं तो अपने संकट निवारण के लिए याचना कर रहे हैं कि हम बच जाएं, लेकिन देवता यह नहीं विचार कर रहे हैं कि दधीचि ऋषि को शरीर देने में कितना कष्ट होगा। जिस शरीर की रक्षा के लिए एक शरीर मांगा जा रहा है, एक शरीर देकर के दूसरे शरीर की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। मनुष्य क्या करता है? यही काम करता है, वो रक्षा नहीं करता। इस शरीर से संसार को भोगने के लिए दूसरे जीवों को खाता है। इस चर्बी को बढ़ाने के लिए और दूसरे के मांस को खाता है। दूसरे के शरीर को मार करके इस शरीर को वो सुख देना चाहता है। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद के अंदर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य इतना इस संसार के इंद्रिय तृप्ति में पागल है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीति अपृणोति न साधु मन्ने यत आत्मनोयम सनम अपि क्लेशद आसदेह। यह शरीर दुख देने वाला है, लेकिन इस दुख देने वाले शरीर से ही सुख की प्राप्ति के लिए कितना दूसरे को कष्ट देते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति में इतने प्रमत्त हैं, पागल हैं, तो समझ नहीं पाते कि कितना दुखमय यह शरीर है। क्लेश आस देह, इस शरीर से क्लेश के अलावा और सुख की आशा नहीं की जा सकती। यह शरीर अपने आप में दुख का भंडार है, लेकिन इस दुख रूपी भंडार से भी हम सुख प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने यह शरीर इसीलिए दिया है। मनुष्य शरीर का जो फल है भागवतम में बार बार बताया गया है। कि मनुष्य का जो शरीर है केवल भगवान अधोक्षज की सेवा करने के लिए है। अहै तुक्यम अप्रतिहयात् आत्मा सुप्रसिद्धति सवय पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति रधोक्षजे। कि सभी पुरुषों का एक ही धर्म है कि इस शरीर से भगवान अधोक्षज की सेवा कर ले। लेकिन सेवा करने के बजाय हम सेवा कराने में लगे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान शायद दसवें अध्याय के अंदर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति देवताओं की भी पूजा करता है शुद्ध भाव से, अगर देवताओं की पूजा करके अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको अपना पूजा मानता हूं, लेकिन देवताओं की पूजा करने के बाद अगर संसारिक चीज मांगता है तो वही अपने आप को बांधने का कारण उत्पन्न करता है। अगर हनुमान जी की हम पूजा करते हैं और हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी मुझे राम से मिलाइए, जिस प्रकार से आप राम की भक्ति करते हैं एक निष्ठता के साथ, दासता के भाव को आप जिस प्रकार निभाते हैं वह भाव मेरे अंदर भी उत्पन्न कीजिए, तो हनुमान जी खुश होते हैं। नहीं, हनुमान जी को ही सब कुछ मान करके, भगवान मान करके कोई उनको पूछता है तो हनुमान जी उसको ठुकराते हैं, तू पागल है, तू मेरे स्वामी के पास जा। तो इस शरीर की फलश्रुति को हमें समझनी है, यह शरीर केवल भगवत सेवार्थ मिला है, भगवान की सेवा के लिए। और यही बात इन श्लोकों के अंदर देवता लोग कहते हैं कि अगर कोई देने वाले की कठिनाई को अगर समझे तो मांगे नहीं, और देने वाला जो दाता है अगर भिखारी की कठिनाई को समझे तो वो इंकार नहीं करे। अब आप विचार कीजिए कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं, हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब आप स्वयं विचार कीजिए। अब दोनों प्रस्ताव देवता लोग रख दिए, जो परम स्वार्थी होते हैं वो अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु मांगे नहीं। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता तो अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इंकार नहीं करेगा। अर्थात हम लोग कठिनाई में हैं, हमारी स्थिति आपदाग्रस्त है, हम लोग असुरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, अब हमारी स्थिति है कि अगर हमारी अब आप रक्षा नहीं करते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होगी, इसलिए कृपा प्रदान कीजिए कि आप दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। आप अपने को कष्ट में डाल करके हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन भागवत यह सिखाता है कि हमें खल नहीं बनना है, भागवत यह सिखाता है कि हमें भद्र पुरुष बनना है। इस शरीर को सत्य कार्य के लिए आहुति दे देनी चाहिए, साधुओं की रक्षा हेतु या साधुओं की भलाई हेतु या भगवान की कार्य हेतु इस शरीर की आहुति दे देनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक के अंदर यह बात बताई गई है कि जो संसारिक व्यक्ति है वो इंद्रियों के भोग को इंद्रिय रूपी यज्ञ के अंदर आहुति दे देते हैं, लेकिन जो संयमी व्यक्ति होते हैं वो अपने ज्ञान रूपी सारे इंद्रियों को भगवत रूपी यज्ञ कुंड के अंदर आहुति दे देते हैं। अर्थात इस शरीर से जो भी कार्य करते हैं वो भगवत संतुष्टि हेतु अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और वही बात इन श्लोकों में बताई जा रही है कि इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह भगवत प्रसन्नता हेतु भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति रूपी यज्ञ कुंड में इस शरीर की आहुति दे देनी है। आहुति देने का मतलब यह है कि इस शरीर से जितना भी कष्ट होए लेकिन भगवान की सेवार्थ हेतु करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि इसीलिए मैंने कृष्ण भावना भावित सोसाइटी की स्थापना किया कि मैं सभी स्त्री और पुरुषों को आह्वान देता हूं कि आओ और अपने इस शरीर से सेवा करके अपने इस शरीर की फलश्रुति को प्राप्त कर सको, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यह शरीर छूटे, लेकिन यह शरीर छोड़ देगा तो इस शरीर को जाने से पहले ही ऐसे कार्य करके जाए कि जीते जी और मरने के बाद भी कोई मुझे कहने ना पाए कि यह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करके गया। इस बात को कंस ने भी कहा है भागवत के दशम स्कंद में, जब वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को, कंस की प्रशंसा करते हुए कि आप बड़े योग्य पुरुष हो, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप इस असमय में अपने बहन का वध मत कीजिए। तो कंस वसुदेव जी से कहता है कि हे राजन, मैं भी जानता हूं और मैं भी चाहता भी हूं कि मैं ऐसा कार्य न करूं कि मेरे जीते जी भी मेरे नाम पर कोई गाली दे और मरने के बाद भी मुझे कोई अपजस सुनाए। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसे इस शरीर से कार्य करें कि रहते हुए भी कोई हमें ऐसा ना कहे कि ये तू ऐसा व्यक्ति है, तू ऐसा करता है, और जाने के बाद भी हमारे संबंधियों को यह सुनने को ना मिले कि वह व्यक्ति ऐसा था जो गलत कार्य करके गया। इसलिए सत्य पथ पर, भगवत भक्ति पथ पर चल करके भक्ति रूपी कार्य करना चाहिए, नहीं तो शरीर का कार्य भागवतम के अंदर कई अध्यायों में कई जगह बताया गया है कि हर शरीर के हर अंग को हम भगवान के कार्य में लगा सकते हैं। एक एक अंग की विशेषता बताते हुए और एक एक सेवा की विशेषता बताते हुए कि इस अंग से हम भगवान को ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो भगवान की सेवा न करते हैं तो संसार की सेवा तो कर ही रहे हैं, जिससे बंधन मिल रहा, अपने आप को बांध रहे हैं। बंधन मुच्यतम के लिए यही कार्य है कि भक्ति संबंधी अगर हम कार्य को करेंगे तो इस संसारिक रूपी बंधन से हम अपने आप को छुड़ा लेंगे। प्रभुपाद जी श्लोक के संदर्भ में तात्पर्य लिखते हैं, ध्यान से सुनिए श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है। किनका किनका? एक वे जो दान देते हैं और वे जो दूसरे जो मांगते हैं। भिक्षुक को चाहिए कि संकट ग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। अब मांगने वाले और देने वाले दोनों को सजग किया जा रहा है। अनुवाद और तात्पर्य को लीजिए तो दोनों में दोनों को सजग किया जा रहा है। मांगे तो किससे मांगे, किस परिस्थिति में मांगे, और दें भी तो किस परिस्थिति में दें, इस पर विचार किया जा सकता है। भिक्षुक को चाहिए कि वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वह भिक्षुक को इनकार न करे। प्रभुपाद जी अनुवाद को ही तात्पर्य के अंदर लिखते हैं कि है तो दो, आज इसके पास नहीं है, जो मैं जानता हूं कि अगर यह व्यक्ति देने में इंकार करता है, या हम लोग भी जाते हैं किसी के पास कुछ कलेक्शन के लिए तो कुछ सेवा के लिए कहा जाता है, तो हम लोगों की पहचान है कि कौन व्यक्ति दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। चाणक्य पंडित ने एक जगह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति से अगर किसी चीज की याचना की जाती है, मांगी जाती है, वह व्यक्ति आप कह रहे हो और वो ध्यान से सुन नहीं रहा है, और कहने अर्थात सुन भी रहा है तो ऊपर नीचे देख रहा है, या सुन भी रहा है सुनने के बावजूद भी वो उठ करके चला जा रहा है, तो इससे अनुभव कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति देना नहीं चाहता। अब उससे बार बार करने की और रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे आंकड़ा लगा लेनी चाहिए कि वो देना नहीं चाह रहा। मांगना भी एक समय की स्थिति को देखते हुए होता है। प्रतिकूल अवस्था में अगर मांग लें तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत गलत होती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि मांगने वाले को भी और देने वाले को भी दोनों को विचार करना चाहिए। शास्त्र के नहीं नैतिक उपदेश हैं। चाणक्य पंडित का कहना है कि संनियमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, ये पक्की बात है कि हम देना नहीं चाहते हैं। पैसा हमारे पास है तो पैसा एक दिन किसी न किसी सेवा में किसी न किसी जगह वो खर्च होने वाली है। यह शरीर को हम सुरक्षित रखना चाह रहे हैं लेकिन एक दिन न एक दिन यह शरीर अपने आप चला जाएगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब यह जाने वाला ही है, सब कुछ चलायमान है, चलम चित्तम चलम बीतम चलेत जीवेति जौवनम, सारा कुछ चलायमान है, चित्त भी चलता रहता है, वित्त मतलब धन भी चलते रहता है और यह जीवन भी चलते ही रहता है, रुकता नहीं। तो कीर्ति जैसे सजीवती, इसलिए इस शरीर से जो कुछ अच्छे कार्य कर लिया जाता है वही जीता है। कीर्ति जैसे सजीवती, इसलिए ऐसे कार्य कर लेना चाहिए इस शरीर से कि वो हमेशा के लिए रह जाए। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत्कार्य के लिए कर लेना चाहिए। जब चलायमान है तो इसे ऐसे कार्य कर लेना चाहिए जो अस्थाई रूप से रह सके। तो अस्थाई रूप से वही चीज रह सकता है जो भगवान के लिए इस शरीर से किया जा सकता है। और हम लोग भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। हम लोगों जैसे कीड़े मकोड़ों की जरूरत क्या है, क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। लेकिन हम उनके संतान हैं, उनका प्रेम है, वो अपने पास हम लोगों को रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी भावना देना चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास ही रहो। लेकिन बुलाने के बावजूद भी भटकने का प्रयास करते हैं। यदि कोई ज्ञानी है तो उसे सत्कार्य के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय प्रभुपाद जी कितना गूढ़ रहस्य लिख रहे हैं, ध्यान देने की बात है। पूरे तात्पर्य के अंदर यह सार है कि इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के जादू में रहने से भयानक परिस्थिति में है। क्यों दुखद स्थिति जनता के बीच में बढ़ती जा रही है कि वह ईश्वर विहीन भावना में रत है, अर्थात भगवत भक्ति से हीन है, कृष्ण भावना भावित से अपने आप को दूर कर लिया है, इसलिए उसके ऊपर कष्ट ही कष्ट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना भक्ति को संपूर्ण जगत में पुनर्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान कर सके। अतः हम समस्त विद्वान पुरुषों तथा स्त्रियों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने एवं मानव समाज में भगवत भावना को पुनर्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभुपाद जी यह प्रार्थना भगवान से भी कर रहे हैं और अपनी कृपा भी दे रहे हैं कि इस संघ की स्थापना करने के बाद भगवान से भी मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि ईश्वर विहीन स्थिति में मनुष्य ज्यादा न जाए और प्रभुपाद जी एक तरह से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि मैंने इस संघ की स्थापना किया, तो इसलिए ऐसे लोगों को हम इसके अंदर भर्ती करते हैं, इसके अंदर ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं कि जो भावना विहीन व्यक्ति हैं उनके भावना को जगाएं और भावना को जगा करके उनके वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझा दें और वो समझ लें और अपने इस जीवन को धन्य बना सकें। इसलिए इस शरीर की असली फलश्रुति का प्रस्तुतिकरण प्रभुपाद जी यहां यह कर रहे हैं कि चाहे जितना भी जिसके पास ज्ञान है या नहीं है, लेकिन इतना तो इस बात पर जरूर विश्वास कर लेना चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है या जो भगवान का विग्रह है या जो भगवान के विषय में पुस्तक है या दुनिया की किसी भी परिस्थिति से हमको उबार सकता है, अगर इसको विश्वास करके रूपाद जी के सोसाइटी पर विश्वास करके भगवान के विग्रह को देख करके अगर आत्मविश्वास करके हम इस बताए हुए पथ पर चलते हैं तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम अपने जीवन की फलश्रुति को पूरा नहीं कर सकेंगे। एक न एक दिन ऐसा जरूर अपने जीवन में अनुभव हम लोग करेंगे अगर इस पथ पर चलेंगे, तो वास्तविक स्थिति की अनुभूति यही हम करेंगे कि वास्तव में प्रभुपाद जी ने जो दिया वह कोई नहीं दिया, अपने आप अपना हृदय नाचेगा। इसलिए प्रभुपाद से, गुरुजन से और इस संघ में आए हुए लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जो भाव अभी बना है वह जीवन पर्यंत या जीवन के जाने के बाद भी बना रहे, यही प्रार्थना करते हुए इस भागवत से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को हम विराम देते हैं कि प्रभुपाद ऐसी कृपा बनाए रखें और जैसे अन्य लोगों को आह्वान करते हैं कि इस संघ में आओ और अपने जीवन का उद्धार करो, तो वैसे लोगों को बुलाने लायक हम लोग बने और बुला करके कुछ दे सकें, और देने में समर्थ तभी होंगे जब प्रभुपाद की कृपा पर निर्भर रहेंगे। अपने सेवार्थ नहीं, भगवान के सेवार्थ के लिए किसी को बुला करके कुछ देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपना कल्याण होगा। यहां देने की प्रतिक्रिया सिखाई जा रही है, जो प्रिय से प्रिय चीज है उसको दधीचि ऋषि ने दे दिया देवताओं को। हम लोग किसी इस शरीर को नहीं दे सकते हैं तो भगवान के द्वारा प्रदत्त बाणी, इस जिहवा की सदुपयोगिता तो कर ही सकते हैं, किसी को भगवान का नाम सुना सकते हैं, किसी को कथा दे सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। उतने बड़े ऋषि ऋषि की तरह त्यागी नहीं है कि हम शरीर ही किसी को दे सकते हैं, लेकिन देने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछ लीजिए, लेट होगा। लोगों की धारणा या लोगों की कहने पर आप मत जाइए। भगवान ने बुद्धि दिया है तो खुद निर्णय लेने का प्रयास कीजिए कि हम किधर जा रहे हैं। इस जगत का जो संतुलन है, बहुसंख्यक लोग ऐसे मिलेंगे जो गलत कार्यों में सहमति देंगे, तो हम अपने मन की संतुलन को देखें कि हमें आत्मसंतुष्टि किस कार्य के करने में हो रही है। जिसको आत्मतुष्टि कहा जाता है उसको खुद ही हम करके अनुभव कर सकते हैं कि किस में हमको संतुष्टि मिल रही है। और यह संसार का नियम है इस भौतिक जगत का कि अच्छा कार्य करेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, भागवत में यह उद्गार दिया हुआ है, यह मनु संहिता की यह वाक्य है कि जिस शरीर को हम लोग अपने पत्नी या अपने घर परिवार के लिए न्यौछावर कर दिए हैं, उस शरीर को ही देखिए कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, असमर्थता की स्थिति में हो जाते हैं, तो उसी शरीर से जिन लोगों, जिन परिवारों का हमने पालन किया था, वही लोग हमारे लिए क्या कहते हैं। और भागवत के तीसरे स्कंद में भी स्वयं कपिल देव जी मां देवती को कहते हैं कि की नासा इव गोचर, उदाहरण देते हैं कि जिस शरीर के लिए हमने, जिस शरीर से हमने बैल जैसा कार्य किया, घर गृहस्थी को मेंटेन करने के लिए मैंने बैल की तरह खूब परिश्रम करके अपने गृहस्थी को मेंटेन किया, लेकिन जब हम कार्य करने में असमर्थ हो गए तो हमारे साथ उस घर के परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे जो संबंधी हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं कि की नासा इव गोचरम, कहते हैं कि जैसे एक कंजूस किसान बैल से खूब काम लेता है, जब तक वो बैल जवान रहा, खूब उससे गाड़ी खींचा, उसके ऊपर बोझ लाद करके ढोया, लेकिन जैसे वो बैल जब बूढ़ा हो गया तो उसके खाना दाना का उसका कुछ ध्यान नहीं रखता, उस बूढ़े बैल को घर से बाहर कर देता है। वही स्थिति हमारे इस बुढ़ापे की होती है कि खाट पर पड़े हैं, पानी 10 बार मांगते हैं तो 1 बार पानी मिलता है, 10 बार कहने के बाद कोई व्यक्ति मेरे वाक्य को सुनता है। इसलिए उस स्थिति को आने से पहले आत्मसंतुष्टि अपने आप अनुभव कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दिया है, विचार जरूर कर लेनी चाहिए कि अपने आप को सुख किस में है। जीते जी अभी भी हम लोग, हम बैल की तरह कार्य कर रहे हैं तो वाह वाही मिल रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या मिल रहा है और इसके बाद की स्थिति क्या होगी, दोनों का संतुलन हम करके अपने को संतुष्ट कर सकते हैं कि किस कार्य को हमें करना है, निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मिक तुष्टि के बल से अगर इसको कसौटी में कसते हैं तो पता चल जाएगा। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप संतुष्टि अनुभूति होती है। इस जगत की तुष्टि के लिए जीवन भर प्रयास करेंगे, एक ही जीवन नहीं, नीतिकारों ने नीति श्लोक में लिखा है कि जितने गंगा जी में बालू है उतना हम संबंधी बना चुके हैं, लेकिन हम किसी को खुश नहीं कर पाए, तो इस 50-60 साल के उम्र में हम किसको खुश कर सकते हैं। इसलिए अपनी संतुष्टि करनी है। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की गौर हरि प्रमानंदे।